नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी। 59 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल। प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में। उच्चतम न्यायालय ने कहा, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को शामिल करने या हटाने के बारे में ट्रिब्यूनल का आदेश सरकारी फैसलों से ऊपर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए सैनिक उपलब्ध कराने के एवज में धनराशि के भुगतान में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13-13, पश्चिम बंगाल में 9, बिहार और मध्य प्रदेश में 8-8, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड में 3 और केंद्र शासित चंडीगढ़ में एकमात्र संसदीय सीट के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में इस चरण में लगभग 2,36,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कल लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान के साथ ही आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र के 1 मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान भी होगा। वोटिंग गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटों के लिए होगी। ईवीएम मशीनों और चुनाव सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो रही हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे चंदौली सीट से दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चरण की 13 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2 सीटों पर भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी मैदान में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
बिहार में इस चरण में 20 महिलाओं सहित कुल 157 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
हरेक मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी सीमा को सील कर दिया गया है और आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। नदियों में वाटर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के दौरान अनहोनी घटना को टालने के लिए पटना में 1 हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सेना के जवानों ने आज फ्लैग मार्च निकाला। मतदान कर्मियों को आज शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। 2000 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर कल की चुनाव प्रक्रिया पर पूरी नजर रखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
पंजाब से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
चाक चौबंद सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों को अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र माने जा रहे गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की 8 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। संवेदनशील माने गए इस संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार सन्नी देओल ने कल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने की मांग की थी। गुरदासपुर से पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ उम्मीदवार हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा निर्वाचन क्षेत्र में कल एक मतदान केंद्र पर दोबारा वोट डालने का आदेश दिया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 12 मई को मतदान हुआ था। आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में 2 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। इन केंद्रों पर लोकसभा और विधानसभा दोनों क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव परिणामों की लगातार 24 घंटे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें 23 और 24 मई को समाचार सेवा प्रभाग के विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम पर।
देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ताज़ा हाल।
स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ करेंगे चुनाव नतीजों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर सुन सकते हैं। ये प्रसारण YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
नवीनतम परिणामों के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com देखें और फॉलो करें हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में फिल्म अभिनेता से राजनीति में आए भाजपा उम्मीदवार सनी देओल को नोटिस जारी किया है। आयोग ने लोकसभा चुनाव के सातवें दौर के लिए प्रचार खत्म होने के बाद कल रात पठानकोट में सनी देओल की एक जनसभा को संबोधित करने के मामले को गंभीरता से लिया है। चुनाव के नियमों के अनुसार मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दों पर आयोग के कामकाज को लेकर मीडिया की रिपोर्टों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने इन रिपोर्टों को अनावश्यक करार देते हुए कहा है कि ये ऐसे समय आए हैं जब देशभर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। हाल में आयोग की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उठे मुद्दों पर विचार के लिए एक समूह गठित किया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता भी उन्हीं मुद्दों में शामिल है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला लेने वाली बैठकों से निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। एक बयान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इन बैठकों से लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ मामलों में लवासा की असहमति को रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर लिया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताजा रुझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं। देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार 40 घंटे के लिए लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश 2019 प्रस्तुत करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा।
लोकतंत्र के महापर्व पर समाचार सेवा प्रभाग की खास पेशकश विशेष जनादेश 2019। कौन पहनेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार। लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों का देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे ताजा हाल।
देहरादून से राघवेश पांडे, दिल्ली से आनंद कुमार।
आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से संजीव शर्मा।
सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु।
शिलांग से समीर वर्मा।
रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश सिन्हा।
नागपुर से गौरी मराठे।
साथ ही विशेषज्ञ करेंगे चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल्स पर। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध। नवीनतम परिणामों के लिए देखें हमारी वेबसाइट www.newsonair.com और फॉलो करें ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को अवैध विदेशी घोषित किए जाने का विदेशी ट्रिब्यूनल का फैसला बाध्यकारी होगा और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उसे शामिल किए जाने या नहीं किए जाने के सरकार के निर्णय से ऊपर माना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि असम में जिन व्यक्तियों का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया वे ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा के लिए अपने परिवार से संबंधित दस्तावेज समेत अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बल जिले के एक गांव पंजगाम में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी, जिस दौरान ये आतंकवादी मारे गए। इस बीच बारामूला जिले के सोपोर इलाके में हथलांगू गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों के अनुसार 1-2 आतंकवादी इस इलाके में फंसे हो सकते हैं। अधिकारियों ने सोपोर कस्बे में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारपुरी में विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। आज तड़के उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री कल बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। वे दोपहर बाद वहां पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ समिति के अनुसार करीब 4,00,000 तीर्थयात्री अब तक चारों धामों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। एक रिपोर्ट।
देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड तीर्थ धामों की धरती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु तीर्थ यात्रा और अध्यात्म के लिए देश विदेश से पहुँचते हैं। गढ़वाल मंडल में स्थित चार धाम विश्व के जाने माने धार्मिक स्थलों में शामिल है। ये चार धाम है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। शीतकाल में चारों धाम बर्फबारी कारण बंद कर दिए जाते हैं और गर्मियों में शिव मुहूर्त में इन पवित्र तीर्थ स्थलों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई को खोल दिए गए। उधर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पुनीत अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा से रोजगार भी मिलता है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
जम्मू कश्मीर में जम्मू के डिवीजनल आयुक्त संजीव वर्मा ने अमरनाथ यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लंगर लगाने सहित यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं की भी समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है।
अरे लाला जी, आप यहाँ? डॉक्टर दीदी आई है, चलिए वहाँ।
अरे बेटी, पिछली बार पूरी जांच करवाई थी, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी।
लाला जी, जो सोता है वो खोता है, कहते हैं जांच इलाज से बेहतर होता है।
इसी तरह हर मतदाता के लिए है जरूरी वोटर लिस्ट में कर ले अपने नाम की जांच पूरी, तो समय रहते अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना भूलना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना।
Check your name in the voter list on nvsp.in or call out voter helpline 1950. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए सैनिक और पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने के बदले में इन देशों को दी जाने वाली धनराशि के भुगतान में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में बृहस्पतिवार को एक गोष्ठी को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव महेश कुमार ने स्थिति पर गंभीरता से विचार करने पर जोर दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, देश के विभिन्न भागों में इसे श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। बिहार में मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया है, जहां भगवान बुद्ध ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने विदर्भ के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। इन जिलों में तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ओडिशा में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी। 59 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कल। प्रमुख उम्मीदवारों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में। उच्चतम न्यायालय ने कहा असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को शामिल करने या हटाने के बारे में ट्रिब्यूनल का आदेश सरकारी फैसलों से ऊपर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए सैनिक उपलब्ध कराने के बदले में धनराशि के भुगतान में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।